ਇਸ ਮਹਿਮਿਤ ਦਾ ਬ੍ਰਣੇਹਮ ਬਰਦਰ ਸਭਾ ਪਦਾਮੀ ਤ੍ਰਿਣੀ ਦੈਤੇਂਦ੍ਰ ਸੰਮਿਤਾਨਿ ਪਦਾ ਮਮ ਕੋਈ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਤਸਮਾਤ ਡੇਅਰਫੋਰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿ ਤੁਨੇ ਤਸਮਾਤ ਫਰੋਮ ਸੱਚ ਏ ਪਰਸਨ ਸਵਤਃ from your majesty mahim land isata very little drine and asking for aham I baradari sabhat from the personality who can give charity munificently padani pushtep trini three daitendra o king of daitas sammitani to the measurement of pada by a foot mama my translation purport by divine grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Okay, let me see, how many of you do not understand Hindi at all? Back to Chennai. So looks like everybody knows Hindi. Haridas, हरिदास का कहना है कि आज गुरुवार है, आज हिंदी क्लास होना चाहिए तो इंग्लिश क्लास के चक्रवर्ती बोला था मुझे, तो हिंदी करें पुड़िया कोई नहीं समझता है। All right, I'll read this translation purport. O King of Daityas, from your majesty, who come from such a noble family and who are able to give charity beneficently, I ask only 3 pieces of land to the measurement of my steps. Purport. Lord Vamandev wanted 3 pieces of land according to the measurement of his footsteps. He did not want more than necessary, but although he pretended to be an ordinary human child, he actually wanted the land comprising the upper, middle and lower planetary system. This was just to show the process, the prowess of Supreme Personality of Godhead. Omajnanatimirandasya jnananjanasalakaya chakshurjinmilitam jena tasmai Sri Gurave Namaha. भूतैर्महद्भिरैवा पुरो विभो निर्मायसेते यदमूसुपुरुषम् भुक्ते गुणांषोडशषोडशात्मकम् सोलम् कृषिस्तम् भगवन् वचांसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलिप्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यह जो 8वां स्कंध है इसे भागवतम में उति कहा गया है। मनवंतर है, सभी 8वां स्कंध मनवंतर है, 7वां उक्ति है। तो मनवंतर है, बलि महाराज भी मनु होने वाले हैं, बाद में उसका वर्णन किया जाएगा। जाय श्री गौनिताय की जाय, राधारस विहार इस तरह में हनुमान की जाय। तो यह जो अध्याय है और यह जो प्रसंग है, इसमें बलि महाराज जो दैत्यों के राजा हैं, वे देवताओं का सब कुछ हासिल कर लिए थे, प्राप्त करके देवताओं को, और देवता लोग एक तरह से कंगाल हो गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनकी माता अदिति भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान वह स्वरूप धारण किए जिससे वो कार्य हो सके। बलि महाराज को कोई परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उन पर उनके गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद था। गुरु और वैष्णव का यदि आशीर्वाद हो तो कोई उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। शुक्राचार्य का आशीर्वाद था और भगवान जानते थे कि आज बलि बड़ा ही बलवान है। जब तक से शुक्राचार्य नाराज ना हो जाए, श्राप इत्यादि ना दे, तब तक से बलि का कुछ भी होने वाला नहीं था। जैसा कहा जाता है, लोहा लोहा को काटता है। भागवतम में इसके पीछे स्कंद में वर्णन किया गया है, प्रहलाद महाराज के विषय में शुक्राचार्य के बेटे संद और अमर कहते हैं कि ये दैत्यों का जो खानदान है वो चंदन के वन के समान है, और उस चंदन वन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी में बेंत का काम कर रहा है। समझते हो बेंत क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी होता है लोहे का जो काटता है, और बेंत जो उसमें लगा होता है वो किस चीज का होता है? लकड़ी का होता है। और कुल्हाड़ी काटता किसको है? लकड़ी को काटता है। तो लकड़ी को लकड़ी के सहायता के बिना नहीं काटा जा सकता है। वैसे ही लोहा लोहा को ही काटता है। तो आज बलि पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तो ब्राह्मणों को परास्त करने के लिए एक ब्राह्मण ही होना चाहिए। भगवान यहां पर बामन का रूप धारण है, बटु बामन, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, क्योंकि ब्राह्मण को के शक्ति को प्राप्त करना था। भगवान जब बलि महाराज, यही गुजरात में का बात है, भ्रू कक्ष, उसे भरूच कहा जाता है आजकल, भरूच का मूंगफली बड़ा फेमस है। कोई गुजराती यहां पर है? भरूच का मूंगफली बड़ा फेमस है। तो नर्मदा किनारे ध्रुव कक्ष जगह पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। ऐसा यज्ञ कर रहे थे कि हमेशा के लिए वो इंद्र बन करके रहे। उनकी यही इच्छा थी, हमेशा के लिए वो इंद्र बन करके रहे, उन्हें कोई प्रास्त न कर सके। वहां पर बामन भगवान पधारे, तो वहां पर सब लोग यज्ञ का काम छोड़ करके और बामन भगवान का आगमन करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। बलि महाराज स्वयं उस यज्ञ का वह संकल्प ले चुके थे, जितने होता थे ऋत्विक थे, सब के सब लोग खड़ा हो गए और उनका स्वागत किए। किस प्रकार से स्वागत किए इसका वर्णन किया गया, उनका पैर धो करके और चरणामृत ग्रहण कर करके इत्यादि। फिर उसके बाद बलि महाराज वाणी से स्वागत कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मन किम करवामते, ब्रह्मन श्रीणा तप साक्षात मन्ने स्वार्थ बपुर्धरम। बलि महाराज कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। बामन देव के आने से बलि महाराज बड़े प्रसन्न थे, इसलिए स्वागत किए। कोई अपने घर पर किसी को स्वागत करता है स्वाभाविक है वो प्रसन्न व्यक्ति है, तब नहीं तो नो एंट्री लगा देते हैं। पहले की सभ्यता संस्कृति थी, अतिथि का लोग स्वागत करते थे। मैं कहा करता हूं कि पहले घर के बाहर लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, बाद में लिखने लगे शुभ लाभ, कुछ समय के बाद लिखने लगे स्वागतम, और अभी लिखते हैं कुत्तों से सावधान। स्वागत कोई नहीं करता, स्वागत करता ही नहीं कोई, और यह स्वागत करता है मतलब कि उस व्यक्ति के प्रति इसका स्वागत कर रहा है, उसके प्रति सम्मान है, आदर है, वह व्यक्ति प्रसन्न है। तो जब हम प्रसन्न हो जाते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बलि महाराज प्रसन्न हैं, आप लोग जा रहे हो सीएसआर का ट्रेनिंग करने, ट्रेनिंग लेने के लिए। ये फंड रेजिंग का मूल मंत्र है यह चैप्टर। जो भी फंड रेजिंग करने जाता है, जो भी फंड रेजर है, ऑन बिहाफ ऑफ बलि महाराज देवताओं के बिहाफ में आ रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, है? शुक्राचार्य कहते हैं एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यप आदित्य जातो देवानाम कार्य साधक। देवानाम कार्य साधक, देवताओं का काम करने के लिए आया हुआ है, अपने लिए नहीं चाहिए। तो पहला सिद्धांत, हम लोग भी जाते हैं लोगों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, अपने लिए नहीं भगवान के लिए। तो ठीक ये प्रसंग जो बलि महाराज का है, जितने भी लाइफ मर्सी प्रीचर हैं, फंड रेजर हैं, उनके लिए बड़ा ही सार्थक है। समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ये ट्रेनिंग है। बावन भगवान ट्रेनिंग दिए हैं कैसे फंड रेजिंग करना। अब देखिए बलि महाराज खुश हैं और की कहते हैं ब्राह्मण किम करवामते, हे ब्राह्मण मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ब्लैंक चेक दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। अरे आप देखने में तो साक्षात ब्रह्मर्षियों का तप का जो स्वरूप है वह धारण किए हैं, उतना ही नहीं रुकते हैं, कहते हैं अद्ध न पितर तृप्ता अद्ध न पावितम कुलम, आज हमारे पितर लोग बड़े प्रसन्न हो गए होंगे जो कि आप हमारे जग मंडप में पधारे, आज हमारा पूरा कुल पवित्र हो गया, आज जो भी यज्ञ तपस्या मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे प्राप्त हो गया क्योंकि आप हमारे यहां आए। और प्रसन्न होकर कहते हैं यद यद वटो वांछसी, हे ब्राह्मण जो जो मांगोगे। पहले तो कह रहे हैं ब्राह्मण किम करवामते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन बावन भवन कुछ नहीं बोले, चुप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो लोग खुद स्वामी जी मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए पूछते हैं लोग ना, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं बताइए, तुरंत नहीं बोल देना चाहिए कि अरे हमको ये करना है ये करना है, नहीं। वो फंड रेजिंग सेमिनार में बताता हूं कि तीन बार लोग पूछते हैं, पहले बार पूछते हैं ये जानने के लिए कि आपका औकात क्या है, दूसरे बार पूछते हैं जानने के लिए कि आपका संबंध जिसके लिए मांग रहे हो उससे क्या है, और तीसरी बार वो जानना चाहेंगे कि आप सही में किस लिए चाहते हो। और ये तीनों चीज यहां पर देखने को आएगा। पहले बामन भगवान के अवकाश को जानने के लिए कहे कि ब्राह्मण किम करवामते, हे ब्राह्मण आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो जानने के लिए टीचरों को बड़ा गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। हम लोग अपने लिए रोटी कपड़ा मंगाने के लिए व्यवस्था करने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोग भगवान के बिहाफ में जाते हैं, सोसाइटी के बिहाफ में जाते हैं। हम लोगों के चलते लोग सोसाइटी को समझते हैं सोसाइटी कैसा है। भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान को किस चीज की कमी है। हम तो उन लोगों के कल्याण के लिए जाते हैं, वैष्णव लोग उनके कल्याण के लिए जाते हैं मांगने के लिए या उनको सेवा में लगाने के लिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग स्नान करते हैं कान में पानी चला जाता है, एक्सपीरियंस है, वो दर्द करने लगता है, तो क्या करते हैं, फिर थोड़ा पानी डालोगे तो पानी निकल जाएगा, यही होगा ना। तो हम लोग उनके कान में पानी डालने जाते हैं उनके दर्द को कम करने के लिए। क्योंकि लक्ष्मी जी किसकी हैं, नारायण की हैं, वो लक्ष्मी नारायण की हैं, लेकिन वो लोग उसे अपना मानते हैं और वही कान में पानी जाना हुआ अपना मानना। तो उनके धन को ले करके और नारायण के पास लाते हैं, लगाते हैं किसी प्रकार से, तो उनका कान दर्द या जीवन का जो दुख होता है, दुख दर्द होता है, वह कम होता है, दुख दर्द कम होता है। तो भगवान वामन देव सीखना चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं, जब वो मांगे कहे कि मांगिए, ब्रह्मन किम करवामति, ब्राह्मण क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं बोले। और फिर कहते हैं सेकेंड चीज, यद यद वटो वांछसी, हे ब्राह्मण आप जो जो चाहते हो तत् प्रतीक्षा एज इट इज मैं दूंगा। मैं फिर भी कुछ नहीं बोले तो अपने मन से बलि महाराज कहते हैं, तुमर्थी न विप्रसुता अनुकर्ताए गाम कांचन, तुम्हें गाय, आपको गाय चाहिए, ब्राह्मण को गाय प्रिय होती है, गाय चाहिए, गाय का व्यवस्था करूंगा। कांचन धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति का व्यवस्था करूंगा। गुणवत् धाम घर, सब कुछ, सब वस्तुओं से सजा, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन सबसे सजा हुआ घर चाहिए, वो भी दूंगा। मृष्टम तथा अन्न पेयमृतम, खाने पीने की वस्तु चाहिए, उस सब का व्यवस्था करूंगा। या आप ब्रह्मचारी हो, शायद शादी करना चाहते हो, वा विप्रकन्या, हमारे राज्य में बहुत ब्राह्मण हैं, उनकी पुत्रियां भी हैं, आपके लिए पत्नी का व्यवस्था करा दूंगा। आखिर कहिए तो क्या चाहिए। अरे एक घर से मन नहीं भरे और चाहिए, के बामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो कोई कहे कि बताइए क्या दूं, तो तुरंत बोल नहीं देना चाहिए, ना चिचिरी नदी के समान हो जाओगे। वो आपको चेक कर रहे हैं कि आप कितने पानी में हो, गंभीर होना चाहिए। वास्तव में बलि महाराज को देना चाहते थे वामन देव को, इतने प्रसन्न हो गए थे। जब ये नहीं बोल रहे थे तो ये क्या क्या बोल रहे हैं और वामन भगवान क्या बोले हैं। खैर वामन भगवान की बात को वो समझ नहीं पाए जो कि आए श्लोक में है, लेकिन अपने अनुसार क्या बोले हैं। वामन देव तीन पग जमीन मांगे, लेकिन बलि महाराज के मेंटालिटी से सोचा जाए तो कहां तीन पग जमीन और कहां ये बोल रहे हैं गाम गाय दूंगा। तीन पग जमीन का दाम क्या होगा आज, और एक गाय का दाम क्या होगा महेंद्र जी, बम्बई में तीन पग जमीन का कितना दाम होगा चतुर्भुज प्रभु, तीन पग जमीन का कितना दाम होगा बम्बई में, कोई दाम लगाओ, कोई नहीं जानता है। हरिया है एक करोड़, हरिया बोल रहा है एक करोड़, तब तो भाई गाय से ज्यादा हो गया। लेकिन खैर गुजरात का बात है, वहां उतना नहीं है। पता है गाय दूंगा, सोना चांदी से भरा हुआ घर दूंगा, खाने पीने का सब वस्तु प्रदान करूंगा, शादी करने में जो लगे वो खर्चा भी दूंगा, लड़की भी दूंगा, उतना से नहीं तो एक आध दो गांव आपके नाम से लिखवा दूंगा। अरे उतना से भी मन नहीं भर रहा है, कहते हैं सूर्यगान गजान वा, मैं हाथी घोड़ा रथान रथ संप्रतीक्षा, सम्यक रूप से हंसी खुशी से आनंद से मैं आपको दूंगा, अपने मन से बोल रहे हैं। फिर भी बावन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब प्रीचर लोग ध्यान रखो, तब यह अध्याय प्रारंभ होता है। श्री सुख उवाच इति वैरोचनेन वाक्यम धर्मयुक्त स सुनूर्तम। विरोचन पुत्र बलि, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विरोचन पुत्र बलि जो बात कहे, कहते हैं धर्मयुक्त, फेंकने के लिए ही बात कहे। कभी कभी हम लोग खुश रहते हैं, खूब फेंक देते हैं, खूब बोल देते हैं, अपने पास नहीं तो अरे मत पूछिए क्या चाहिए आपको, एक चाहिए से बुम बुम सब दे देंगे, हालांकि कुछ है नहीं, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसा होता है। लोग खुश हो जाते हैं, बाद में कहा हाँ 5 करोड़ ठीक है दे देंगे, आज नहीं कल दूंगा, और कल जाओ तो मिलेंगे नहीं, परसों जाओ तो, ऐसे लोग बोलते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंक देते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कह देते हैं। देखिए बलि महाराज अकेले नहीं थे ना, वहां पर बहुत लोग थे, सबके सामने बोल रहे हैं बलि महाराज ना, तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए यहां लोग बोल देते हैं कि अरे क्या चाहिए, कोई बात नहीं हमारे पास पैसा कम थोड़े है, जो चाहिए आपको हम देंगे, बताइए क्या चाहिए, गौशाला बनाना कितना पैसा लगेगा कितना, और कोई बात नहीं ले लीजिएगा, वहां तो बोल देते हैं बाद में देते नहीं है। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो बात बलि महाराज कहते हैं, कहते हैं धर्मयुक्त। एक राजा को चाहिए, एक गृहस्थ को चाहिए, एक ब्राह्मण को जो जो वस्तु चाहिए वह प्रदान करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण लोग अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, किस प्रकार से भिक्षाटन के द्वारा। क्षत्रिय लोग अपना जीवन यापन करते हैं या राज चलाते हैं, किसके द्वारा, टैक्स के द्वारा, कर लेकर के। वैश्य लोग अपना जीवन चलाते हैं कैसे, व्यापार करके, किसी गोरक्षण वाणिज्य, और शूद्र लोग नौकरी करके, सेवा करके, तो ये भरण पोषण का साधन है। तो बलि महाराज जानते थे कि ब्राह्मण एक ब्राह्मण है, तो इसे ऐसा शब्द आया हुआ है धर्मयुक्त। बलि महाराज का जो बात था वो धर्मोचित था, और धर्मयुक्त का दूसरा अर्थ हुआ कि बलि महाराज स्वयं धर्म में स्थित थे, बलि महाराज स्वयं धर्मात्मा है, वे धर्मात्मा बात कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वहीं चुप नहीं हो रहे हैं, कहते हैं स सुनतम, बलि महाराज जो बात कहे हैं वो झूठा बात नहीं है, अनृतम बिल्कुल सत्य बात कहे हैं, यानी जो कहे हैं वो करेंगे, न कि यहां लोग कह देते हैं कुछ हाँ ठीक है इंप्रेस करने के लिए, बाद में नहीं देते हैं। विष्णु यहां पर है, किधर है, हाँ हमारा एक डोनर है, वो कानपुर मंदिर के मार्बल में जितना खर्चा लगने वाला था बोला कि दे दूंगा 5 करोड़ रुपए दूंगा। पहले 5 करोड़, 3 साल पहले, 3 साल 4 साल हो गया, 5 करोड़ का चेक दिया, वो चेक अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। वो बोला कि मैं बताऊंगा तब आप डालना, जा इसी गौर निताई की जाए। फिर बाद में 2.5 करोड़ का चेक दिया, फिर भी कहा कि मैं बताऊंगा तब डालना, और वो भी ब्रीफ किस में पड़ा हुआ है। फिर कुछ समय पहले एक साल पहले फिर 2.5 करोड़ का चेक दिया, वही विष्णु स्थान पड़ा हुआ है। विष्णु कहता वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं जाओ भाई कोई बात नहीं, एक दिन बुद्धि उसको आएगी। तो लोग कह देते हैं बलि महाराज वैसे नहीं है, इसलिए यहां पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि स सुनृत अनृतम, वो झूठ नहीं बात कहे थे, जो कहे थे वो करने वाले थे। निशम्य भगवान प्रीत प्रतिनदत अव्रवीत, निशम्य सुन करके बलि महाराज का इस प्रकार से वैष्णवोचित बात जब सुने भगवान वामन देव, निशम्य, निशम्य का अर्थ होता है सुन करके समझ करके उनके कैपेसिटी को जान करके, निशम्य मतलब टोटली विथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। वो भगवान जान गए कि बलि झूठ नहीं बोल रहा है, भगवान जान गए कि जो मैं एक कह रहा है वो करेगा भी, भगवान जान गए कि बलि के पास शक्ति भी है करने के लिए। इसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निशम्य, समझ करके। भगवान ये भी जान गए कि बलि सही में देना चाहता है, इंप्रेस करने के लिए बात नहीं कह रहा है, निशम्य भगवान प्रीत। जो व्यक्ति सत्य बोलता है सत्य से भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान वामन देव बड़े खुश हुए भगवान प्रीत। सुखदेव गोस्वामी वामन देव को यहां पर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं। जो सर्व सामर्थ हैं उन्हें क्या जरूरत है विप्र कन्या की, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, उन्हें क्या जरूरत है गाय, गाय की उनकी प्रियतमा है गौ, धरती भूदेवी उनकी पत्नी है, धन दौलत, जो जो बात बलि महाराज कहे हैं क्या भगवान नारायण को जरूरत है उन चीज का, कोई जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं भगवान, सर्व सामर्थ भगवान है। ये वस्तुएं वामन भगवान को खुश नहीं की, बल्कि क्या खुश किया, धर्मयुत सासु अंतम, धर्मयुत बात किए, सत्य बात कहे तो सत्य बात। आगे इसी प्रसंग में आगे आया है जहां पर माता पृथ्वी कहती है कि मैं सब कुछ धो सकती हूं लेकिन झूठ बोलने वाले का भार नहीं धो सकती हूं। तो जो कहता है मैं इतना दूंगा और नहीं देता है, समझना कि वो पृथ्वी पर भार है। प्रीचर लोग सब ध्यान रखना, डायरेक्टली मत कह देना उन लोगों को, इनडायरेक्टली कह देना जरूर, प्रचार करते समय कह देना, ताकि वो लोग समझे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और स्वयं हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, हरिजा समझा ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोले। हो सकता है सत्य में थोड़ा कष्ट होगा लेकिन झूठ में पग पर कष्ट होगा। जीवन में मैं कथा में कहता हूं, मैं भी एक बार झूठ बोला था, कई एक बार बोला होगा लेकिन एक बार, ब्रजहरि प्रभु जानते हैं किस तरह से इन्होंने भंडा फोड़ दिया हमारे झूठ का। एक थे इनकम टैक्स कमिश्नर, उनका नाम था मिस्टर बल, हमारे कैप्टन सरारिया ने हमको इंट्रोड्यूस करा दिया था, वो हमको हेल्प किए, बहुत लाइफ में बनवाए, लेकिन वो क्या करना शुरू किए कि मिसयूज करना शुरू किया अपना पावर, बार बार गेस्ट हाउस में रूम लेते थे, पता नहीं क्या करते थे, भगवान जाने क्या करते थे, वो सब बात नहीं करना चाहता हूं। तो हमारे रिसेप्शन वाले कंप्लेन हमसे कहे, अब एक बार उनको रूम चाहिए था, उन्होंने फोन किया, मुझे आज भी याद है, मैं हाजी अली राउंड सर्कल से बाहर निकल रहा था, तो मैं कहा उनसे कि मैं पूना में हूं, झूठ बोला क्यों, हमारे पीछे पड़ गए थे, मैं कहा कि मैं पूना हूं बॉम्बे नहीं हूं, तो बोले कि ठीक है, तो ब्रजहरी प्रभु ने कहा हाँ हम बात कर लीजिए, तो इनसे बात कर लिया। अर्जुन ने कहा कि ये तो यहीं पर है, ये कदिए तो यहीं पर है। और फिर उन्होंने हमको फोन किया कि आप झूठ बोलते हो, साधु होकर के ऐसे ऐसे ऐसे। माई गुडनेस, हमारा रिलेशनशिप चौपट हो गया, अब थोड़ा दोस्ती फिर से हो गया है। लेकिन तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी परिस्थिति में। यदि मृत्यु का भी परिस्थिति आ जाए, अपने लिए तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के रक्षा के लिए। वो भी शास्त्र में बताया गया है कि झूठ कहां कहां बोलना चाहिए, और वो झूठ झूठ नहीं कहलाता है। उन स्थानों पर यदि कोई बोले तो स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यार्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्वाग्निजुगुष्टम। छह स्थान है यहां पर झूठ बोल सकते हो, लेकिन तो झूठ नहीं कहा जाता है। शुक्राचार्य जी कोट करके बताए हैं आगे। एनीवे, तो भगवान बड़े खुश हुए बलि महाराज से, क्योंकि बलि महाराज सत्य को प्रतिपादित कर रहे थे, सत्य बोल रहे थे। उनकी सत्य से सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात करते हैं, निसंज समझ करके भगवान प्रीत, भगवान बड़ी प्रसन्न हुए। और प्रति नंदीदम अब्रवीत, और बलि महाराज को अब संबोधित कर करके बोल रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बलि महाराज का प्रशंसा कर रहे हैं। फंडरेजिंग का सेकेंड चैप्टर, जब भी फंडरेजिंग करने जाओ तो देखो, संसार में सबको प्रशंसा चाहिए, चाहे भगवान हो चाहे कोई हो, सबको गुणगान चाहिए, सबको अपने नाम का बढ़ाई चाहिए। हां, ज्यादा मत करना, उतना ही करो जितना जानते हो। अनजाने में कर दोगे तो कह रहे भाई प्रभु जी मैं तो ऐसा बच्चा हूं नहीं, आप क्यों बात कर रहे हो, या ना भी कहे सोचेगा कि कुछ इंटीरियर मोटिव है। तो जब फंड रेजिंग करने जाए तो जिसके पास जाए उसके विषय में जानना जरूरी है। होमवर्क कर करके जाओ, जिसे भी मिलने जाओ होमवर्क, आकर गूगल है ना, गूगल पर सर्च कर लो क्या वो व्यक्ति करता है, कंजूस है कि देने वाला है, क्या है क्या कुछ जान लो तब जाओ, ऐसे मत चले जाओ। नहीं तो रक्षा में हत्या हो सकता है। बलि महाराज का किस प्रकार से भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, कुल इतना ही बात से, स्वागत से, और जो बात कहे थे सत्य बात कहने से भगवान प्रसन्न होकर के स्वागत करेंगे। बचा तैवे जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्म जुता जसस्करम यस्या प्रमाणम भृगवम सांपराये पितामह कुल वृद्ध प्रशांत बच तव तजन जनदेव। हे जनदेव, राजा को पहले जनदेव, नरदेव इत्यादि कहा जाता था। जनदेव, हे लोगों के देवता, बच तव, आपका द्वारा जो कहा गया वचन है सुनृतम, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आप सत्य बात कह रहे हो, यानी आप देने में समर्थ हो, आप दे सकते हो, आप ये सब कर सकते हो। और उतना ही नहीं, उनके लिए नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कुलोचितम हो क्यों नहीं, क्योंकि आपकी परंपरा रही है कुलोचित, ये कुल के उचित है। कहा जाता है कुलीन बनो, कुली मत बनो। कुली समझते हो ना, धोने वाले। कुलीन बनो, जो भी काम करो देखोगे ऐसा हम कुछ ना काम करें जिसे हमारे पूर्ववर्ती दादा परदादा खानदान का नाम बदनाम हो। दुख की बात है, आजकल पश्चात जगत की जो शिक्षा है वो ये नहीं देखता है। वो तो बाप माँ को समझते ही नहीं है 18 साल के बाद में। वो शिक्षा भी वैसे ही है और हम भारतीय भी वैसे होते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है वो कुलीन बनने के लिए, कुली बनने के लिए नहीं है। ये पाश्चात्य जगत का एजुकेशन जो है, ये सभ्यता संस्कृति है, हम लोगों को कुली बनाकर रखा है। ढोते रहो दिन भर गधे के समान, कुली बना दिया है वास्तव में। तो कम से कम हम वैष्णव हैं, हम लोगों को कुलीन बनना चाहिए, कुली नहीं बनना चाहिए। तो कुलोचितम, आप जो बात कहें बिल्कुल सही, अपने कुल के ठीक है, आपके कुल में ऐसा, लेकिन आप धर्मज और आप स्वयं धर्म से संबंधित बात कर रहे हैं, धर्म में युक्त हैं, धर्म में स्थित हैं, धर्मात्मा हैं, और आपके इस आचरण से क्या करें, जसस करम, आपके कुल का ख्याति बढ़ेगा। कुछ ऐसा करो कि कुल पर दाग न लगने जाए। हम गलती में बोलते हैं किसका बेटा है, है? नहीं, लोग बोलते हैं कि इसने गलती किया, किसका बेटा है, बाप का नाम बदनाम होता है। एक बार, और वास्तव में बेटा कुछ गलती करता है, नौकर की गलती होती है, नौकर गलती करता है तो नौकर गलती नहीं होती है, मालिक गलती। शिष्य गलती करता है तो शिष्य का नाम बदनाम नहीं होता है, गुरु का नाम। कोई खराब मतलब किसका किसका चेला है, लोग पूछते हैं ना गुरु कौन है, गुरु का नाम बदनाम होता है। तो भक्तों को सावधान रहना चाहिए, कभी ऐसा काम न करें जिसे हमारे सोसाइटी का नाम बदनाम हो, प्रभुपाद जी का नाम बदनाम हो, हमारे गुरु और मैनेजमेंट का नाम बदनाम हो, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करें जसस करो, यह कृति में वृद्धि हो, जस में वृद्धि हो। अब भगवान कहते हैं यस्यम प्रमाणम भृगव, अरे कहना क्या है, आप जो काम करेंगे जसस करम, कुलोचित करेंगे, और आप स्वयं ट्रेंड हैं, इसके प्रमाण कौन है, भृगव, भृगुवंशी शुक्राचार्य जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग गुरु तो दीक्षा दे दिए, लेकिन ट्रेनिंग दूसरा कोई देता है, 10% डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग दिए हैं शुक्राचार्य, सांपराये पितामह, और आपके पिता पितामह जो प्रहलाद जी हैं, कुलवृद्ध प्रशांत, बड़े इंसान स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार से बलि महाराज का भगवान प्रशंसा करते हैं, कहते हैं न ही एतत् अस्मिन् कुले कश्चिन् सत्व कृपणा पुमान, आपके खानदान में आज तक कोई कंजूस नहीं हुआ है, कोई युद्ध मांगा है तो युद्ध किए हैं, कोई धन मांगा है धन दिए हैं, जो जो वस्तु मांगा गया है आपके खानदान से लोग दिए हैं। प्रहलाद जी जैसे आकाश में चंद्रमा आज हैं, ताराओं के बीच में प्रकाशवान होते हैं, ठीक वैसे ही प्रहलाद जी, प्रहलादम उद्भाति यथो उड़पखे, आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशमान हैं। अरे उनके पिता आपके पर पितामह, परदादा, दादा के पिता परदादा, फिर कश्यपु और हिरण्याक्ष के तो बातें क्या कहना है। हिरण्याक्ष तो इतने प्रतापी थे कि पृथ्वी को भी अपने, देखो कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी को भी अपने वश में कर लिए थे, छिपा लिए थे, और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए विष्णु को आना पड़ा। स्वयं कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कज में आया था। और उसके बाद कहते हैं यतो जातो हिरण्याक्ष, उनके हाथ में गदा था, गदा लेकर जहां जहां जाते थे कोई सामने नहीं आता था, गदा युधा और पृथ्वी को अपने वश में कर लिए। जब विष्णु उनको परास्त कर दिए, मार डाले, तो आपके प्रपितामह, आपके परदादा यानी हिरण्यकश्यप, वे अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए लड़ाई प्रारंभ कर दिए और ऐसा लड़ाई कर रहे थे, नहीं पहले अभी हिरण्यकश्यप का ही वर्णन कर रहे हैं, सॉरी, कि विष्णु भागते गए, भागते 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 जहां गए वहां आपके परदादा पहुंच गए। एक समय तो ऐसा आया कहीं जगह नहीं था तो विष्णु उनके हृदय में छिप गए, चले गए। भगवान वर्णन कर रहे हैं जो जो काम हुआ है हिरण्यकश्यप के साथ में, हिरण्यकश्यप के साथ में, ये सब बातें वहां पर बताए कि आपके परदादा मरते मर गए लेकिन शत्रुता नहीं छोड़े। जब लड़ाई का चैलेंज हो गया था विष्णु के साथ में तो हार नहीं माने, तो आपका आप उस खानदान से आने वाले हो। अरे उतना कौन, पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विजवत्सल, पिता प्रहलाद पुत्रस्ते, जिनके पिता प्रहलाद जी थे उनके पुत्र यानी आपके पिता, जिनका नाम था विरोचन। कहते हैं वे विरोचन कैसे थे, द्विजवत्सल, ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते थे। एक समय तो ऐसा हुआ स्व आयु द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो अदात स्वयाचित, एक समय देवता लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और आपके दादाजी से, आपके पिताजी से उनका शरीर मांगे। स्व आयु, अपना जीवन वे दे दिए उन देवताओं को, जानते हुए भी कि ये लोग देवता हैं, लेकिन आए थे किस रूप से, ब्राह्मण का रूप धारण कर करके। जिस प्रकार से जरासंध विष्णु से द्वेष करता था लेकिन ब्राह्मणों के प्रति बड़ा सम्मान था। जब महाराज युधिष्ठिर राजसीय यज्ञ कर रहे थे, सब राजा लोग युधिष्ठिर महाराज का शरण ग्रहण किए थे लेकिन जरासंध नहीं किया था। भगवान कृष्ण द्वारका में थे, वहां दो खत आया, एक उन ब्राह्मणों से आया, एक उन राजाओं से आया, 99 राजाओं को जरासंध बंदी बनाकर रखा था, एक राजा का प्रतीक्षा था, उनका बलि देने वाला था। तो वे लोग खत लिखे भगवान कृष्ण के पास कि आकर मेरा रक्षा कीजिए, और उसी समय युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उनका खत आया, तो भगवान हस्तिनापुर गए, वहां से अर्जुन और भीम को लेकर के मगध पहुंचे, गया पहुंचे, यहां जरासंध का राज था। वे लोग ब्राह्मण का रूप धारण कर गए क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का सम्मान करता था। उनके हाव भाव से, चाल चलन से जरासंध समझ गया था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन चूंकि ब्राह्मण का रूप धारण किए थे और सम्मान करता था, पहले कल्चर कितना था, एक कल्चर है, आजकल लोग बोलेंगे ये हिपोक्रेसी है, आजकल का कल्चर कुछ अलग हो गया, बोलेंगे हिपोक्रेसी है, आजकल कुछ ज्यादा ही लोग समझते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं ना तो कुछ ज्यादा ही समझते हैं। जैसे एक बार कहीं ऐसे पढ़े लिखे लोगों का समाज था, तो बात हो रहा था देवकी और वसुदेव जी का। जब कंस देवकी का रथ हांक रहा था तो आकाशवाणी हुआ कि देवकी का आठवां गर्भ काल बनेगा। कंस ने क्या किया आप लोग जानते हो। तो ये पढ़ा लिखा लड़का क्या बोलता है, कंस बड़ा मूर्ख था, उसे बुद्धि नहीं था। अरे उसे चाहिए था देवकी वस्तु को अलग अलग रख देना, बच्चे नहीं होते, साथ में नहीं होते बच्चे कैसे होते, इतना मारपीट करने की क्या जरूरत था, ये सब करने की क्या जरूरत था, डिवोर्स करा दिया होता। इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि भगवान आना चाहेंगे तो उन्हें कोई पति पत्नी का संसर्ग नहीं चाहिए। भगवान कहीं से, भगवान नरसिंहदेव पिलर से आ गए, क्या जरूरत है बाप मां का। भगवान के लिए बाप मां की जरूरत नहीं है, भगवान कहीं से। तो हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं वो पढ़ लिख करके, उससे जला लगाते हैं कि जब जरासंध जान गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है तो अटैक क्यों नहीं कर दिया, और चाहे विरोचन जब जान गए कि देवता लोग हैं तो उनका भेद क्यों नहीं खोल दिया। ये सभ्यता संस्कृति नहीं कहती है, भले आप जान जाओ लेकिन मर्यादा उल्लंघन बहुत बड़ा पाप है। मर्यादा उल्लंघन से आयु, लक्ष्मी, बुद्धि सब नष्ट होता है। हम लोगों को मर्यादा में रहनी चाहिए, हम लोग भक्त हैं, सीखना चाहिए। सीनियर डिवोटी हैं, जूनियर डिवोटी हैं, कैसे लोगों से डील करना ये सीखना चाहिए। मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करनी चाहिए। असुर लोग भी नहीं किए, जरासंध भी नहीं किए। जब लोग जा रहे थे और जरासंध विदाई के लिए बोला कुछ और इच्छा हो तो मांग लीजिए, जब इन लोगों ने कहा कि हमें मलयुद्ध चाहिए, तब जरासंध समझ गया, कहा कि तो मैं जानता था कृष्ण, कह दिया ठीक है मैं दूंगा मलयुद्ध, लेकिन कृष्ण तुम तो कई एक बार भाग गए हो तो तुमसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। अर्जुन छोटा है, यदि पटक दिया तो भी नाम बदनामी, और पटका गया तो भी नाम बदनामी। हाँ भीम है, चलो उससे लड़े, भगवान भी यही चाहते थे। तो जरासंध जानता था लेकिन फिर भी मर्यादा अतिक्रम नहीं कर रहा था, ये सीखना चाहिए हम लोगों को। विरोचन जानते थे कि देवता हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहां पर, स्वयं आयु द्विजलिंगे भ्यो, द्विजलिंगे भ्यो, जानता था कि ब्राह्मण का रूप धारण किया, छद्म वेशी हैं। सीता जी भी जानती थी कि रावण कौन है, ये ब्राह्मण कौन है, लेकिन असली सीता जी तो कहीं और थी। ये सीता जी तो भगवान श्री राम का काम करने के लिए, क्योंकि भगवान राम ने कहा था कि पूरे दंडकारण्य को असुरों के असुर विहीन कर दूंगा मैं। तो ये सीता जी का चोरी रावण नहीं किया होता तो कैसे ये काम होता। तो स्वयं आयु द्विजलिंगे भ्यो देवे भ्यो अदात स याचित, देवे भ्यो देवताओं को अदात प्रदान किए स याचित, जब उन लोगों ने उनका देह मांगा। तो कह रहे आप वैसे खानदान के हैं, भगवान आचरित धर्म आस्थितो गृह में देवी, आप धर्म के आचरण करने वाले वैसे खानदान से हैं, और आपके पूर्वज लोग ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किए हैं, और इसी के चलते सुरण्य हो च उद्धाम कृत भी, इसलिए सुर वीरों में आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा नाम है। तो खूब प्रशंसा कर लिए, चार पीढ़ी का प्रशंसा किया, यानी बिगिनिंग ऑफ उनके खानदान है, बलि महाराज के खानदान के बिगिनिंग जो फाउंडर थे उस खानदान के, उस कुल के कौन थे? रहुकारी भरो, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। वो वहां से शुरू किए, प्रहलाद महाराज के लिए कह रहे तो चंद्रमा के समान है आकाश में। अपने पिता, उनके पिता विरोचन के लिए कहे, कह रहे वो जानते हुए भी कि देवता लोग हैं फिर भी अपना शरीर ब्राह्मण का धारण कर आए थे, ब्राह्मणों को स्नेह करते हैं इसलिए उन्होंने अपना शरीर देने के लिए तैयार हो गए। आप उसी खानदान के हैं, तस्मात देयरफोर अब आइए श्लोक पर। तस्मात ततो महिषद ब्रेहम बरदर्शभ, हे पृथ्वी पते, हे पृथ्वी पर देने वालों में बरद ऋषभ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, बरद मतलब देने वाले, देने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए नवधा भक्ति में जब आती है अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम, तो आत्मनिवेदनम के उदाहरण कौन है? अली महाराज। सर्वम के उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम प्रहलाद महाराज। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम लक्ष्मी जी। और अर्चनम पृथ्वी महाराज। दास्यम वंदनम अक्रूर जी। दास्यम हनुमान जी। साख्यम अर्जुन। और आत्मनिवेदनम बलि महाराज। बलि महाराज हैं उसके उदाहरण। कहते हैं सुरे अन्य च उदाम कृति भी तस्मात तदो मही मिश्रदम ब्रणे हम ब्रणे अहम बरदर्शभ। मैं जानता हूं कि जो भी मैं मांगूंगा आप जरूर हमको देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कारण क्या है? आप पृथ्वीपति हैं यानी आपके पास देने के लिए क्षमता है। और बरदर्शभ आप कंजूस भी नहीं हो। दो चीज चाहिए ना, राइट महेंद्र जी? दो चीज चाहिए, धन चाहिए और देने की इच्छा चाहिए। किसी के पास धन है लेकिन देने की इच्छा नहीं है तो नहीं देगा। किसी के पास इच्छा है देने का लेकिन धन नहीं है तो काम नहीं होगा। लेकिन बलि महाराज के पास प्रहलाद जी सॉरी बावन भगवान कहते हैं दोनों है। कहते हैं तस्मात तो मही निषद ब्रणे हम बरदर्शभ। आप की क्षमता भी है, आप महिषपति है यानी पृथ्वीपति हैं और देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बरद ऋषभ देने वालों में सर्वश्रेष्ठ यानी इच्छा वाले भी हैं और संपत्ति भी हैं। तो मानो बलि कहते अच्छा मांगिए तुम क्या चाहिए। बहुत आप बात किए, सही बात किए, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मांगिए क्या चाहिए। तो भगवान बड़ा दैन्य भाव से कहते हैं पदानि त्रिणि दैतेन्द्र। हे दैतेन्द्र, एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं भगवान देखा जाए तो बाह्य दृष्टिकोण से। इस श्लोक के कई एक प्रकार से व्याख्या किया जा सकता है, इसका अर्थ हो सकता है पदानि त्रिणि दैतेन्द्र। हे दैतेन्द्र देवताओं के इंद्र, हमें तीन पग चाहिए। छोटे थे हम लोगों का शरीर, कितना बड़ा है आप लोग यहां से जाने के बाद नापना, आप पग लेना, तीन पग लोगे जहां पहुंचेगा और वहां सो जाओ, देखना आपका शरीर कितना है। यानी कह रहे हैं कि सोने के लिए व्यवस्था कर दो। एक बाह्य अर्थ इसका यह है कि मैं ब्राह्मण हूं चाहिए क्या, सोने के लिए व्यवस्था कर दो, खाने पीने के लिए तो भिक्षा मांगकर काम करिए लेंगे, ब्राह्मण को यही चाहिए और क्या चाहिए, उनको तो ब्रीफकेस और सूटकेस की जरूरत नहीं है, बस सोने के लिए तीन पग जमीन हो जाए बस और कुछ नहीं चाहिए। समझे कुमार जी? नो बैंक बैलेंस पर ब्रह्मचारी है, पर आजकल तो वो क्या आधार कार्ड हो गया तो बैंक बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्या करें, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तीन पग जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए खाने पीने के लिए, बटू हैं। चार प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटचक, बौद्धक, हंस और परमहंस। तो ये बौद्धक कैटेगरी में आते हैं, बटू हैं बौद्धक कैटेगरी में। बौद्धक वे कहलाते हैं जो पेड़ से गिरा हुआ फल है तोड़ते भी नहीं है, गिरा हुआ है, खेत काट दिया गया है उसमें अन्न कुछ गिरा हुआ है उसको लेकर के, और नहीं तो मधुकरी कर करके। तो इसका अर्थ हुआ पलामी त्रिणी दैतेंद्र। दैतेंद्र आप ही राजा हैं, तो राजा का काम है सब प्रजा का भरण पोषण करना, इसलिए आपका काम है हमारा भी भरण पोषण करना। तो हमको रहने के लिए आवास का व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन आगे वाला जो श्लोक खतरनाक वही श्लोक है, असली मीनिंग इसी में आ रहा है। कहते हैं सम्मितानी पदाम मम, लेकिन नापूंगा मैं, आप नहीं नापूंगे। यदि बलि महाराज नाप दिए होते तो काम गड़बड़ हो गया होता है। इसलिए भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, तो जब भी आप जाओ फंड रेजिंग करने के लिए तो एक साथ में दो काम करना, समझ में आ रहा है कमे है। इसीलिए मैं भक्तों कहता हूं कि कभी कैश मत मांगना, काइंड मांगो। कैश मांगोगे तो लोग जोड़ने लगते हैं, 10,000 मांगो तो लोग जोड़ेंगे, और कहो कि आज भक्तों का लंगर आपकी तरफ से रहेगा। कितने भक्त हैं? 100 भक्त हैं, ठीक है प्रभु जी हम करा देंगे। उस समय जोड़ेंगे नहीं कितना पैसा होगा, बाद में जोड़ेंगे तो 50,000 रुपया हो गया। 10,000 मांगोगे तो उनकी नानी मर जाएगी, सोचा है 10,000 बहुत ज्यादा है, 8,000 ले लीजिए। तो कैश मत मांगो, काइंड मांगो, और जरूरत क्या है कैश का, जो जरूरत है मांग लो, कह दो उनको काइंड के रूप में, कोई कुछ कर दे कोई कुछ कर दे। तो भगवान वामन देव वही काम यहां करें, पनामी त्रिदैतेन्द्र मुझे तीन पग जमीन चाहिए लेकिन नापूंगा मैं मेरे, यानी इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं कि सब मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो तुम अहंकार में बैठे हुए हो ना वो तुम्हारा नहीं है। दो पग में ही सब कुछ ले लूंगा, ऊपर नीचे तीसरा में कहां जाओगे तुम, इनडायरेक्टली यही भगवान कहे हैं बात। जानते थे कि बलि को गुस्सा आएगा क्योंकि दैतेन्द्र कहे हैं, राजा कहे हैं। अब भगवान स्पेसिफाई करने के लिए अपना डिफेंस तुरंत छोड़ देते हैं, कहते हैं नान्यते कामयी राजन बलान्य जगदीश्वरात्, मैं जानता हूं कि आप देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जगदीश्वर हैं देने वालों में, हे राजन। न अन्यते कामय, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेना बहुत बड़ा पाप है। विद्वान लोग कहते हैं विद्वान अयात अर्थ प्रतिग्रह, प्रतिग्रह करना यानी संग्रह करना, अत्याहार प्रयास, अत्याहार करना जो है वो पाप है। नयन प्राप्नोति वही विद्वान, जो विद्वान होता है वो आवश्यकता से ज्यादा नहीं देता है, जैसा कि इस उपनिषद में कहा गया ईसा वास इदम सर्वम यत्किंचित्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह कश्च निधनम, मा गृह कश्च निधनम, दूसरे के धन के लिए गीध मत बनो, लालची मत बनो। वही कहते हैं विद्वान अर्थ प्रतिग्रह, प्रतिग्रह का पाप लग जाएगा, इसीलिए जितना जरूरत है उतना ही। अब उसके बाद में बलि महाराज की जो बात कहें, अहो ब्राह्मण दयाद बाज, एनीवे वो अच्छा है। तो मोटा मोटी यह जो श्लोक है, इस श्लोक का सिंपल अर्थ यही है कि भगवान बलि महाराज का प्रशंसा करने के बाद में जिस काम के लिए आए हैं वह अपना प्रस्ताव रख दिए। काम क्या था किसी को याद है, किस लिए आए हैं? देवताओं का राज उन लोगों को देने के लिए। तो कोई कहते तीन पग में कैसे दे सकते हैं, तीन पग में सब कुछ दिए हैं वो बाद में हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आई थिंक सब लोगों को जाना भी है ना, तो नो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, एनीबडी एनी क्वेश्चन, वन क्वेश्चन मे बी। सुंदर चैतन्य प्रभु फर्स्ट, बाद में राजसूय प्रभु। बैठिए बैठिए, प्रसाद है सब लोगों के लिए, कहाँ चिंता करते हो, इतना जल्दी घबरा गए। जगन्नाथ तुम्हारा तो डबल प्रसाद है।
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। हियर ये भगवान जब उनका गुणगान कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि प्रीचर को ज्यादा हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए गुणगान, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तो बोल रहे थे कि विष्णु भी आपके परदादा से डरते थे, वो भाग रहे थे वगैरह, तो वो थोड़ा ज्यादा लगता है।
नहीं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष क्या समझते थे, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द डोनर। वो विष्णु को बलशाली नहीं समझ रहे थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष विष्णु को बलशाली नहीं कमजोर समझ रहे थे। भगवान भाग रहे थे, पीछे पीछे गाल लेकर जा रहा था, पूरा पृथ्वी देख लिया। भगवान भागते गए, अंत में भगवान कहां गए, उसके हृदय में आ गए। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो समझता है भगवान तो कमजोर आदमी है। चैलेंज क्यों लिया, जब समझ गया होता कि भगवान बहुत पहलवान है तब चैलेंज नहीं, तो शरण में आ गया होता, शरण कर लिया होता कि नहीं, कमजोर समझा। तो ये कह रहे हैं उनके माइंड से, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के माइंड से। क्लियर? यस राजसूय प्रभु। आई मीन यदि वो भगवान को भगवान मानते और ये कहते कि भगवान या आपके पिताजी से डरते थे तब गलत था, भगवान मानते ही नहीं थे उनको। यस राजसूय प्रभु।
वामन भगवान और बलि महाराज, भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्मन मुदच्यते, तो जिसके घर मांगने जाते हैं उसको भिखारी बना देते हैं भगवान। बलि महाराज के यहां मांगने के लिए गए, जिसने दिया उसी को भिखारी बना दिया भगवान ने। तो आपका जो संदेश है फंडराइजर लोगों के लिए, तो कितने लोगों को भिखारी बनाया है उधर? भिखारी मीन्स कितने आत्मनिवेदन में आए। और दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, फंड राइजिंग में देखा गया
इसका मैं उत्तर दे दूं पहले,
ये सब साथ में दे देना, एक और पूछ लेते।
नहीं नहीं, पहला पहला बाद में दूसरा, एक के बाद दो आता है। भगवान का एक नाम है हरिहर, हरि और हर, हर मतलब हरण करने वाले। वो भगवान अपने भक्तों का सुख और दुख दोनों हर लेते हैं, लेकिन हरि के रूप में सुख और दुख दोनों हर लेते हैं, हर के रूप में दुख को नष्ट कर देते हैं। हर प्रलय करने का काम है, हर के रूप में दुख को नष्ट कर देते हैं और सुख को अपने पास छिपा लेते हैं ताकि भक्त उनके पीछे पीछे दौड़ता रहे। सुख को छिपा लेते हैं, पहले सुख भक्त के पास था, सुख भी ले लिए दुख भी ले लिए, दुख को तो नष्ट कर दिए और सुख को अपने पास छिपा लिए, पॉकेट में रख लिए, तो भक्त लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, भगवान दे दो हमको, भगवान दे दो किसी प्रकार से। तो ये भगवान है हरिहर। तो यदि भक्त लोग जाते हैं भगवान के लिए मांगते हैं तो यदि कोई कंगाल भी बन जाता है तो हरिहर का कृपा हुआ है, बलि महाराज पर कृपा हुआ। अंत भला तो सब भला, क्या नहीं उनको मिल गया ये देखिए। उनको तो वह राज मिला जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, भगवान स्वयं कहते हैं कि इंद्र से भी कहीं बड़ा तुम्हारा राज्य है, यहाँ पर सब लोग तुम्हारे मित्र रहेंगे, कोई द्वेषी नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर वॉचमैन बनकर रहूंगा। उतना ही नहीं, इस जीवन के अंत में तुम इंद्र बनोगे। तो एंड इज वेल, ऑल इज वेल।
यस, और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि आप इस्कॉन के फंडराइजर के एराइजर हैं, चीफ हैं, कई दफे ऐसा देखा गया वो जी जो कलेक्टर ज्यादा कलेक्शन करता है बाद में मंदिर में दादागिरी करता है।
आए? बाद में
प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी लगा हुआ है,
मैं सुना
दादागिरी करता है, मैंने इतना फंड कलेक्ट किया, छाती फुला के, डर नहीं किसी का, मैं तो इतना कलेक्टर हूं। और ये भी देखा गया कि अथॉरिटी उसको सपोर्ट करती है, नए नए पैसा लाता है तो उसके दोष माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी है, वो दिन भर सेवा करता है लेकिन फंड नहीं लाता, वो थोड़ा भी गलती करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये आप हमारे पर बहुत बड़ी शिक्षा आपकी होगी, क्या वीडियो के माध्यम से बात हमको बताएंगे।
देखिए, मैं स्वयं फंड रेजर हूं, यदि कोई भी सेवा है, चाहे वो पुजारी का सेवा है, चाहे बाथरूम सफाई का सेवा है, चाहे कुकिंग का सेवा है, चाहे फंड रेजिंग का सेवा है, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर सब सेवाएं ट्रांसजेंडल हैं, जिसकी जैसी शक्ति। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पत्थर ढोते हुए देखा, उसे ही प्रसन्न थे, और गिरहड़ी बालू ले जा रही थी, भगवान उसे प्रसन्न, ये यथा महा प्रसन्न थे तहां से बजा में हम। यदि कोई प्राइड आ रहा है तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान का सेवा करने से नम्रता आनी चाहिए, न कि प्राइड आनी चाहिए। यदि प्राइड आ रहा है तो आप समझ लो कि उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। तो फंड रेजरों को कान खोलकर सूझना चाहिए, यदि प्राइड आ रही है फंड रेजिंग से। मैं याद लाता हूं, एक भक्त यहां पर था, कहता था यदि मैं पैसा नहीं लाऊंगा तुम लोगों का बटर ब्रेड नहीं चलेगा, 84-85 का। आज कहां है, कहीं होटल में थाली धो रहा है, क्या फायदा। तो प्रभुपाद जी इस्कान बनाए हैं कल्प वृक्ष के समान है, जो चाहिए वो मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपको, समुद्र में शार्क भी हैं, मगर भी हैं, छोटी मछलियां भी हैं, और छोटी मछलियों को कैसे जीवन यापन करना उन शार्कों के बीच में सीखना ही पड़ेगा। तो इस्कान में जो ज्वाइन किया है, यहां शार्क लोग भी हैं और छोटी मछलियां भी हैं, तो कैसे सरवाइव करना। यदि भगवान पर विश्वास होगा, गुरु पर विश्वास होगा, तो सब प्रकार से भगवान अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास और कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊंच नीच होगा, अप डाउन होगा, लेकिन भगवान का शरण लेकर। रामायण में एक प्रसंग आता है, जो मछली होती है वो पानी के शरण में होती है, बरसात के दिन में देखोगे खूब धारा प्रवाह पानी आता है, आप तो उत्तराखंड वाले हैं, उधर से धारा प्रवाह पानी आता है, हिमालय से हरिद्वार से ऊपर चले जाओ कितना धारा प्रवाह है। वो धारा प्रवाह पानी में हाथी को बहा देगा, वो पानी उसमें इतना शक्ति का हाथी को बहा देगा, लेकिन छोटी मोटी बुम ऊपर चली जाएगी, क्योंकि पानी के शरण में है, पानी के शरण में है इसलिए ऊपर चली जाएगी, लेकिन हाथी पानी के शरण में नहीं है ना, नीचे आ जाएगा। वो आनंद हाथी को पानी से बड़ा मजा आता है हाथी को, लेकिन पानी के शरण में नहीं है। तो हम भगवान के शरण में रहेंगे तो कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हम बुम ऊपर जाएंगे, भगवान रक्षा करेंगे। और जीव गोस्वामी कहते हैं जब कठिनाइयां आती हैं उस पर पैर रखो ऊपर जाओ, दूसरा कठिनाई पैर रखो ऊपर जाओ, पैर रखो ऊपर जाओ, इस प्रकार से कठिनाइयां आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी भगवत धाम जाने के लिए। इसीलिए माता कुंती कहती है विपदा संतु तासा चत्र तत्र जगत गुरु, भगवान विपत्ति है तो विपत्ति दो, इससे नहीं बन सकती है। धन्यवाद, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।